ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुरक्षण मुद्रण केंद्र को व्यावसायिक कारोबार करने की अनुमति देने के लिए सार्वजनिक निकायों की सूची में शामिल करने का सरकार का निर्णय। पूर्व विशिष्ट पदाधिकारियों को विदेश में उपचार कराने पर सरकार से खर्च नहीं मिलेगा, सर्वोच्च अदालत का फैसला। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए भीष्मराज आंगतम्बे। भक्तपुर और काठमांडू के सीमा क्षेत्र मनोहरार नदी के किनारे की सुकुमवासी बस्ती हटाई गई। सरकार द्वारा आर्थिक स्थिति पत्र 2083 सार्वजनिक। अर्थतंत्र चुनौतियों से घिरा होने के बावजूद रूपांतरण के अवसर हैं मौजूद। और अफ्रीकी देश चाड में पानी के स्रोत को लेकर हुई हिंसा में 42 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने सुरक्षण मुद्रण केंद्र को निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए व्यावसायिक कारोबार करने की अनुमति देने के लिए उसे सार्वजनिक निकायों की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। आज सिंह दरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने बताया कि सुरक्षण मुद्रण केंद्र को सार्वजनिक निकायों की सूची में शामिल करने संबंधी सूचना नेपाल राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। प्रवक्ता पोखरेल ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पद पर अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल को पदोन्नति सहित नियुक्त करने का निर्णय भी बताया। इसी प्रकार मंत्रिपरिषद बैठक ने आर्थिक क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से भंसार नियमावली 2083 को स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान को खाली कराने के हालिया मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रवक्ता पोखरेल ने स्पष्ट किया कि आज उपकुलपति सहित पदाधिकारियों के साथ हुई चर्चा सकारात्मक रही और मैदान को तोड़ने या खाली कराने का सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा कि टीयू क्रिकेट मैदान के समझौते की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए नए किराया समझौते के माध्यम से इसे निरंतरता दी जाएगी। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना और 30 दिन के कार्य मूल्यांकन के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर मंत्री पोखरेल ने कहा कि सरकार नागरिकों के फीडबैक और मूल्यांकन के आधार पर स्वयं को सुधारते हुए आगे बढ़ रही है और 100 दिन के लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर है। सरकार ने नेपाल की वर्तमान समग्र आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति के मूल्यांकन सहित नेपाल की वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र 2083 सार्वजनिक किया। आज जारी इस दस्तावेज का उद्देश्य देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का वस्तुनिष्ठ चित्र प्रस्तुत करना और आगामी नीतियों, योजनाओं तथा बजट निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। स्थिति पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि नेपाल की अर्थव्यवस्था वर्तमान में कई चुनौतियों से घिरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद रूपांतरण के लिए बहुआयामी अवसर मौजूद हैं। दस्तावेज में उल्लेख है कि यदि स्थिर सरकार, सुशासन और निवेश मैत्री नीतिगत वातावरण बनाया जाए तो निजी क्षेत्र का विश्वास पुनः स्थापित होगा और घरेलू और विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। इससे उत्पादन क्षेत्र का विस्तार, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की अपेक्षा की गई है। आर्थिक स्थिति पत्र में जलविद्युत क्षेत्र को देश की बड़ी संभावनाओं में से एक बताया गया है। नेपाल के पास प्रचुर जल संसाधन होने के कारण सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र का विस्तार और विद्युत निर्यात से स्थिर विदेशी आय प्राप्त की जा सकती है। साथ ही क्षेत्रीय विद्युत व्यापार के विस्तार से हरित ऊर्जा बाजार में नेपाल की भूमिका और मजबूत होने की बात कही गई है। सरकार ने प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और हिमालयी धरोहरों को भी देश का एक मजबूत आर्थिक आधार बताया है। इसके अतिरिक्त इस दस्तावेज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, सूचना प्रविधि सेवाएं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और डिजिटल उद्यमिता को आने वाले दशक के प्रमुख अवसरों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कम पूंजी में अधिक मूल्य सृजन करने वाले ये क्षेत्र नेपाली युवाओं के वैश्विक बाजार से जोड़ने की क्षमता रखते हैं। सर्वोच्च अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सभामुख और पूर्व प्रधान न्यायाधीश सहित पूर्व विशिष्ट पदाधिकारियों को विदेश में इलाज कराने पर सरकारी खर्च न देने का फैसला सुनाया है। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, डॉ मनोज कुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी और अब्दुल अजीज मुसलमान की संवैधानिक पीठ ने आज ये निर्णय देते हुए पहले से दी जा रही इस सुविधा को समाप्त कर दिया। सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोरियाला के अनुसार पूर्व पदाधिकारियों के विदेश में इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन करने से संबंधित नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता द्वितीय संशोधन कार्यविधि 2073 की धारा 12(1) को खारिज कर दिया गया है। इस कार्यविधि में पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, उपसभामुख, उप प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, सहायक मंत्री, सांसद तथा संवैधानिक निकायों के पदाधिकारियों के लिए निश्चित सीमा तक विदेश में इलाज का खर्च सरकार द्वारा वहन करने का प्रावधान था। पूर्व विशिष्ट पदाधिकारियों के इलाज खर्च में कटौती की मांग करते हुए वर्ष 2079 में अधिवक्ता राधिका चामलागाई और भद्र प्रसाद नेपाल स्वागत ने रीट याचिका दायर की थी। हालांकि देश के भीतर इलाज कराने पर सरकारी खर्च देने की व्यवस्था यथावत रहेगी। नेपाली कांग्रेस के संसदीय दल के नेता के रूप में भीष्मराज आंगदम्बे सर्वसम्मति से चुने गए हैं। कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय सिंहदरबार में हुई बैठक ने नेता आंगदम्बे को दल का नेता चुनने का निर्णय किया। बता दें कि इससे पूर्व आज कांग्रेस केंद्रीय कार्य संपादन समिति की बैठक में सभापति गगन कुमार थापा ने आंगदम्बे को संसदीय दल के नेता के रूप में प्रस्तावित किया था। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाओं में जमा बचतकर्ताओं की राशि वापस करने के उद्देश्य से सरकार ने नई व्यवस्था के साथ चक्रीय कोष संचालन संबंधी कार्यविधि लागू की है। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की बचत वापसी हेतु चक्रीय कोष स्थापना एवं संचालन कार्यविधि 2083 को राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित करते हुए इसके लागू हो जाने की जानकारी दी है। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी प्रबंधन समिति के अंतर्गत एक अलग चक्रीय कोष स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य बचत वापसी प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। कार्यविधि के अनुसार समस्याग्रस्त घोषित होकर संपत्ति प्रबंधन और दायित्व भुगतान प्रक्रिया में शामिल सहकारी संस्थाओं के बचतकर्ताओं को राशि लौटाने के लिए ये कोष संचालित रहेगा। इस कोष में नेपाल सरकार से प्राप्त धनराशि, सहकारी संस्थाओं की संपत्ति बिक्री से प्राप्त रकम, गबन या अनियमितता में संलग्न व्यक्तियों से वसूली गई राशि तथा अन्य प्रतिपूर्ति शामिल की जाएगी। यदि सहकारी की संपत्ति बिक्री के बाद भी बचत वापसी के लिए पर्याप्त राशि नहीं होती है तो संबंधित व्यक्तियों की संपत्ति, हिस्सेदारी या कंपनियों में किए गए निवेश को भी जब्त कर नीलाम किया जा सकेगा। बचत वापसी प्रक्रिया सहकारी अधिनियम 2074 के अनुसार दावा करने वाले बचतकर्ताओं के बैंक खातों के माध्यम से दोहराव से बचते हुए की जाएगी। वापसी की राशि निर्धारित करते समय समस्याग्रस्त घोषित किए जाने से पहले की जमा राशि को आधार माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन बचतकर्ताओं ने ऋण लिया है वे तब तक अपनी बचत वापस नहीं पा सकेंगे जब तक वे अपना ऋण पूरा चुकता नहीं कर देते। यदि मामला अदालत में विचाराधीन है तो अंतिम निर्णय आने तक राशि वापस नहीं की जाएगी। कार्यविधि में सामाजिक संवेदनशीलता का भी ध्यान रखा गया है। एकल महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदायों और अपांग व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। इसी तरह छोटे बचतकर्ताओं को प्राथमिकता देने का अधिकार समिति को दिया गया है। यदि उपलब्ध राशि पर्याप्त नहीं होती है तो कोष में उपलब्ध धनराशि को आनुपातिक आधार यानी दामाशाही पर वितरित किया जाएगा। सरकार ने सहकारी के संचालकों, प्रबंधकों, लेखा समिति, ऋण उप समिति तथा अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों की संपत्ति और बैंक खातों को अग्रिम रूप से फ्रीज करने का प्रावधान भी किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। भक्तपुर और काठमांडू की सीमा क्षेत्र में स्थित मनोहरा नदी के किनारे की सुकमवासी बस्ती में अवैध रूप से बनाए गए घरों और झुग्गियों को तोड़कर बस्ती खाली करा दी गई है। मध्यपुर थीमी नगरपालिका एक, लोकमथली और काठमांडू महानगरपालिका 32 जड़ी बूटी स्थित मनोहरा नदी किनारे रह रहे सुकमवासी बस्ती के कुल 810 घर झुग्गियों को आज दोपहर तक तोड़ने का काम पूरा किया गया। पुलिस के अनुसार मनोहरा सुकमवासी बस्ती क्षेत्र की सभी संरचनाओं को ध्वस्त करने का कार्य पूरा हो चुका है और इसके लिए 24 डोजर का उपयोग किया गया। जिला प्रहरी परिसर भक्तपुर के प्रमुख एवं एसपी सूर्य बहादुर खड़का ने जानकारी दी कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए अस्थायी और स्थायी सभी ढांचों को डोजर से पूरी तरह हटा दिया गया है। बस्ती में अवैध रूप से बने बाकी घर झुग्गियों को आज सुबह से ही हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रारंभ में 13 डोजर लगाए गए थे, बाद में अतिरिक्त डोजर जोड़कर पूरी बस्ती खाली कराई गई। कुल 810 घर झुग्गियों में से लगभग 60% संरचनाएं पहले ही ध्वस्त की जा चुकी थीं, जबकि शेष सभी को आज दोपहर तक गिरा दिया गया। एसपी खड़का के अनुसार कल रविवार और आज सोमवार को बस्ती को शांतिपूर्ण ढंग से खाली कराया गया। अवैध घर झुग्गियों को तोड़ने के लिए पुलिस और काठमांडू महानगर पालिका के नगर प्रहरी को तैनात किया गया था। अधिकांश लोगों ने पहले ही अपने सामान हटा लिए थे, जिसके बाद ढांचों को तोड़ा गया। सरकार ने सुकुम्बासी बस्ती के प्रभावित विद्यार्थियों को नजदीकी विद्यालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री सस्मित पोखरेल द्वारा बस्ती स्थानांतरित होने के कारण मुश्किल में पड़े विद्यार्थियों की सुरक्षा और सहजीकरण संबंधी जारी किए गए छह सर्कुलर के मुताबिक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र सानोठिमी ने परीक्षा व्यवस्थापन और समन्वय को प्रभावकारी बनाने का स्थानीय तहों से अनुरोध किया है। शनिवार की बारिश के बाद रोशी नदी में आई बाढ़ के कारण अवरुद्ध बीपी राजमार्ग आज दोपहर 3 बजे से पुनः चालू कर दिया गया है। डिवीजन सड़क कार्यालय भक्तपुर के अनुसार रोशी नदी में अस्थायी डायवर्जन बनाकर आज दोपहर 3 बजे से आवागमन बहाल किया गया। कार्यालय के प्रमुख सीनियर डिवीजनल इंजीनियर सुमन योगेश ने बताया कि रविवार भर डायवर्जन बनाने का काम किया गया था, लेकिन रविवार दोपहर हुई बारिश से कुछ स्थानों पर फिर से क्षति होने के कारण उसी शाम यातायात संचालन संभव नहीं हो सका। उनके अनुसार आज सुबह से दोबारा डायवर्जन बनाकर दोपहर 3 बजे से यातायात नियमित किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य अफ्रीकी देश पूर्वी चाड में पानी के स्रोत को लेकर दो परिवारों के बीच हुआ विवाद बढ़कर हिंसा में बदल गया, जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई। उप प्रधानमंत्री लिमाने महामत ने बताया कि बदले की कार्रवाई का सिलसिला काफी बड़े इलाके में फैल गया, जिसके बाद सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने बताया कि सेना की त्वरित कार्रवाई से हालात पर काबू पा लिया गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है। श्री महामत ने गांव में पारंपरिक मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने और आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए न्यायिक कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुरक्षण मुद्रण केंद्र को व्यावसायिक कारोबार करने की अनुमति देने के लिए सार्वजनिक निकायों की सूची में शामिल करने का सरकार का निर्णय। पूर्व विशिष्ट पदाधिकारियों को विदेश में उपचार कराने पर सरकार से खर्च नहीं मिलेगा, सर्वोच्च अदालत का फैसला। नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए भीष्मराज आंगदम्बे। भक्तपुर और काठमांडू के सीमा क्षेत्र मनोहरा नदी के किनारे की सुकुम्बासी बस्ती हटाई गई। सरकार द्वारा आर्थिक स्थिति पत्र 2083 सार्वजनिक। अर्थतंत्र चुनौतियों से घिरा होने के बावजूद रूपांतरण के अवसर है मौजूद। और अफ्रीकी देश चाड में पानी के स्रोत को लेकर हुई हिंसा में 42 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।